पर हमारी शादी तो एक नाटक थी, फिर तुमने मुझे अपना पति कब से मानना शुरू कर दिया? ईशान के सवाल पर कशिश सोच में पड़ गई, फिर निचला होठ बाहर निकालते हुए उलझन भरे स्वर में जवाब दिया, पता नहीं। तो ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है? मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ, क्या इसके बाद भी आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है? जरूरत तो नहीं, पर सवाल ये उठाता है कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए क्यों तैयार हो गई, जबकि तुम्हें तो बंधन में बंध कर रहना बिल्कुल मंजूर नहीं था। तुम ही ने मुझे धमकी दी थी कि दीदी की शादी के बाद तुम्हें आज़ाद कर दूं और इस दौरान तुम्हें अपनी पत्नी समझकर तुम पर पति होने का हक भी न जताऊं, वरना तुम महादेव का त्रिशूल मेरे सीने के आर पार कर दोगी। ईशान की ये बातें सुनकर कशिश उससे दूर हटकर बैठ गई और नाराज़गी से मुंह फुलाते हुए शिकायती लहजे में बोली, आप ताना मार रहे हैं या मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं कि अपनी ही कही बात पर कायम नहीं रह सकी? कशिश नाराज़गी से उसे घूरने लगी। वहीं ईशान ने तुरंत ही उसकी बात पर एतराज़ जताया, बिल्कुल नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि शादी के रिश्ते के बंधन से डरने वाली और उनसे दूर भागने वाली लड़की ने कब, क्यों और कैसे इस रिश्ते को अपना लिया? आपने ही तो समझाया था कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर औरत धोखेबाज और बेवफा नहीं होती, वैसे ही हर मर्द मेरे पापा जैसा नहीं होता और आप उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, एक लविंग और केयरिंग भाई, जिम्मेदार बेटे और अच्छे इंसान हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब तो आप मेरे लिए एक बंद किताब थे, जिसे पढ़ने की इच्छा तो शिद्दत से होती थी पर आप मुझसे बात ही नहीं करते थे। मैं कुछ पूछती तो हमारे रिश्ते की हकीकत याद दिलाकर मेरा मुंह बंद करवा देते, तो कभी मुझे बेवजह ही डांट देते। पर फिर धीरे धीरे मैं आपको जानने लगी, समझने लगी और जैसे जैसे आपसे जुड़ती गई आप मुझे और ज़्यादा अच्छे लगते गए। आपको खुश देखती तो मैं खुश हो जाती, आपके साथ वक्त बिताना, बातें करना अच्छा लगने लगा था मुझे। आपकी उदासी और दुख मुझे तकलीफ पहुंचाने लगे थे। मेरा बस चलता तो आपकी ज़िंदगी से हर दर्द मिटा देती, पर उस दर्द में आपकी साथी बनने से ज़्यादा मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकी। नाटक के रिश्ते में भी आप पर अपना हक समझने लगी थी और जताने भी लगी थी। आपको कोई और देखे भी तो बर्दाश्त नहीं होता था मुझे, बहुत गुस्सा आता था। डांट तो अपनी ज़िंदगी में बहुत बार खाई, मार भी खाई, लेकिन कभी इतना बुरा नहीं लगा। कुछ देर उदास होती, रोती, फिर भूलकर वापस पहले जैसी हो जाती। पर उस दिन बाहर खेलने की बात पर जब आपने मुझे डांटा और हाथ उठाया तो बहुत बुरा लगा था मुझे। बहुत रोई भी थी मैं और चाहकर भी सामान्य नहीं हो सकी थी। तब जिंदगी में पहली बार मैं इतनी उदास रही थी, वो भी इतने वक्त तक। जब आपने मुझे छोड़कर उस लड़की का साथ दिया था, बहुत दिल दुखा था मेरा कि कैसे आप मुझे छोड़कर उसका साथ दे सकते हैं। शायद वक्त के साथ आपके लिए मेरे जज्बात बदल गए और आप बहुत अहमियत रखने लगे थे मेरे लिए, जिसका एहसास खुद मुझे नहीं था। वो तो दिनेश ने मुझे कहा कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। उसके बाद मैंने उस सवाल को खुद ही खुद में सैकड़ों बार दोहराया, बहुत सोचा, फिर एहसास हुआ कि शायद सच में प्यार करने लगी हूँ आपसे। पर आपकी तरफ से ऐसा कुछ नज़र नहीं आता तो बहुत दुख होता था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझा लिया कि आपसे कोई उम्मीद नहीं रखनी, कुछ नहीं बताना। उम्मीद टूटने पर बहुत दर्द होता है और मोहब्बत ठुकराए जाने की तकलीफ मुझसे सहन नहीं होती, इसलिए सब पहले जैसे ही चलने दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर दीदी की शादी तक आपने मुझे नहीं अपनाया, आपके दिल में मेरे लिए कोई एहसास नहीं बन पे और आपने हमारी डील के हिसाब से रिश्ता खत्म करना चाहा, तो जैसे अचानक आपकी जिंदगी में आई थी वैसे ही चुपचाप चली जाऊंगी। इसलिए जब दीदी की शादी के इतने दिनों बाद भी आपने हमारे रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की, मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया, तो मैंने जाने का फैसला कर लिया। आपको और आपसे जुड़े रिश्ते को पीछे छोड़कर घर की दहलीज पार तो कर ली, पर समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो घाट पर चली गई और वहाँ बैठकर तन्हाई में आंसू बहाती रही, क्योंकि सामने से मुझसे बात करने की, अपने दिल की बात मुझे बताने की तो हिम्मत थी ही नहीं तुम में, है ना? कशिश का पूरा कन्फेशन सुनने के बाद ईशान ने तल्ख लहजे में नाराज़गी से सवाल किया। कशिश ने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा और उंधे स्वर में बोली, आपने मुझे उम्मीद की एक किरण भी दिखाई होती तो मैं ऐसा नहीं करती, पर आप तो निर्मोही बने हुए थे, तो इसके अलावा और कोई चारा था ही नहीं मेरे पास। क्यों नहीं था कोई चारा? शादी की थी मैंने तुमसे, हक था तुम्हारा मुझ पर और इस घर पर। अपनी मोहब्बत का इजहार भले ना करती, पर एक बार सामने से मुझसे बात तो करती कि मैं इस रिश्ते से अब क्या चाहता हूँ, मेरा फैसला जानने की कोशिश तो करती। तुमने अपने दिल की बात दिल में छुपा कर रखी, खुद से सब इमेजिन करके इस घर से जाने का फैसला कर लिया और चली भी गई, पर मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। आज दोपहर से शाम तक मैंने बनारस की खाक छानी, हर गली हर नुक्कड़ पर तुम्हें तलाशा, बाजार से लेकर शमशान तक भटका। ऐसी कौन सी जगह थी जहां मैंने तुम्हें तलाशा ना हो? लोगों तक से पूछा और उसके बाद ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली कि गुस्से से खून खौल गया था। लोग तुम्हें मेरी माँ से कंपेयर कर रहे थे और मैं जहर के घूंट पीकर चुपचाप सब सह गया। जानता था कि तुम ऐसी नहीं, पर पलटकर कुछ कह न सका, क्योंकि तुम्हारे उठाए इस कदम ने मुझे इस लायक रहने ही नहीं दिया था। जिंदगी में दूसरी बार मैंने ये जिल्लत सही है। खुद को इतना बेबस, मजबूर और लाचार मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हर बीतते वक्त के साथ मेरी घबराहट और डर बढ़ता जा रहा था। कितना बेचैन था मैं तुम्हारे लिए। तुम समझ ही नहीं सकती कि आज मैंने क्या कुछ सहा है तुम्हारे कारण, और वो चंद घंटे कैसे आजाब बन गए थे मेरे लिए। ईशान की आंखों के सामने वो वक्त किसी चलचित्र की भांति घूमने लगा, जब वो कशिश की तलाश में दर दर भटक रहा था। चेहरे पर दर्द, बेबसी, अपमान, जिल्लत, मजबूरी, तड़प, बेचैनी जैसे कई भाव उभर आए। शब्दों में उसकी पीड़ा, दुख और नाराजगी झलक रही थी। कशिश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। उसने कहां ये सब सोचा था? आज फिर उसकी नादानी ने ईशान को तकलीफ पहुंचाई थी। उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था, उसके पुराने जख्मों को कुरेद दिया था, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। सॉरी, मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपको किसी के आगे शर्मिंदा होना पड़ा या आपका सर किसी के आगे झुके। बस इस बार इसे मेरी नादानी समझकर माफ कर दीजिए। कशिश ने सिसकते हुए अपने कान को पकड़ लिया और अपनी गलती की माफी मांग रही थी। ईशान की नाराजगी तो उसके मासूम से चेहरे को देखते ही गायब हो जाती थी। उसके आंसू देखकर वो अपनी सारी तकलीफ भूल गया। उसने कशिश की बाह पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। कशिश भी उसकी बाहों में सिमट गई।